राम। ये प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध भाद्रपद कृष्ण एकादशी सन 2050 तदनुसार दिनांक 14 अगस्त 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः सकर्म निरतः सिद्धिं यथा बन्धे तत्स्वयं। भगवत गीता में आया है कि मनुष्य अपने अपने कर्तव्य का ठीक तरह पालन करे तो उसे कल्याण हो जाता है। उसकी विधि बताई है के स्वधर्म का पालन करते हुए दूसरों की सेवा करें, दूसरों को सुख पहुंचावे। यह सेवा करने का औरों को सुख पहुंचाने का अवसर गृहस्थाश्रम में ही है। ब्रह्मचारी क्या सेवा करे वे बेचारे पढ़ते हैं, वानप्रस्थ क्या सेवा करे जंगल में रहते हैं अपना निर्वाह करते हैं, साधु संन्यासी एक क्या सेवा करे अपना दीक्षा एक पालन कर भजन करते हैं। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा है जो सबका पालन करता है। सबका माँ बाप गृहस्थ आश्रम है। ब्रह्मचारी विद्यार्थी वे भी ब्रह्मचारी गृहस्थों से ही पैदा हुआ है, गृहस्थों से ही पलते हैं और गृहस्थ आश्रम में है वे भी गृहस्थों से ही पैदा हुए, गृहस्थों से ही पले हैं। वानप्रस्थ भी गृहस्थों से ही बनते हैं और गृहस्थों से ही पलते हैं। जमीन के खास अपने बिना हल जोते हुए वो फल खाने वाले आजकल तो कठिन है काम, परंतु पालन होता है गृहस्थों से। और साधु संन्यासी है वो तो प्रत्यक्ष ही बात है, भिक्षा मांग करके अपना काम करते हैं तो गृहस्थों से ही पलते हैं। वास्ते गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा माना गया है। एक हमारे संत ने बात कही थी वो मेरे को बहुत बार याद आती है। जी के स्वर्गाश्रम में बहुत एक बड़ा बड़ था, बड़ा सा, उसके नीचे सत्संग करते थे दिन भर। सुबह इधर छाया रहती थी, दोपहर के बाद उधर छाया रहती, मध्य में छाया रहती, उसकी बड़ की छाया में सत्संग होता था। तो वहां एक संत आए, उनको कहा कि महाराज आप कुछ सुनाइए। तो सुनाने लगे तो कहा देखो भाई तुम जो सब लोग बैठे हो तुम हमारे माँ बाप हो, क्यों तुम गृहस्थ हो और गृहस्थ हमारे माँ बाप, क्यों गृहस्थों से हम पैदा हुए, गृहस्थों से हम पलते हैं तो माँ बाप पैदा भी करते हैं पालन भी करते हैं, तो आप सब हमारे माँ बाप हो। फिर बोले कि महाराज भाई देखो हमारा बेटा बेटी भी तुम ही हो। बेटा बेटी तुम कैसे नहीं, माँ बाप दे दो ठीक बात है कि बेटा बेटी तुम ही हो, हम बीमार पड़ जाए तो सेवा कौन करे, बेटा बेटी करे, तो तुम्हारे बेटा बेटी तुम ही हो, तुम ही सेवा करोगे। तुमने ऐसी बात नहीं लगी हमें, माँ बाप भी तुम ही हो और बेटा बेटी भी तुम ही हो, तो हम लोगों में तो परिवार तुम ही हो भाई, समझे। परिवार में क्या हुआ है, माँ बाप घर बेटा बेटी और क्या हुआ है परिवार में, तो हमारा तो परिवार हो आप लोग, तो आप लोगों को बातें बतावे। तो गीता ने कहा कि अपना अपना कर्तव्य, तो आप गृहस्थों का आपका कर्तव्य है, ये भाई बैठे हैं इधर बहना बैठी है, दोनों मिलकर के एक गृहस्थ होता है, स्त्री पुरुष होते हैं वो दोनों मिलकर एक गृहस्थ होता है, पुरुष नहीं रहे तो स्त्री आधी, और गृहस्थ पुरुष ने स्त्री और स्त्री ना रहे तो पुरुष आधा, तो इस तरह से दोनों मिलकर एक गृहस्थ है, स्त्री ना रहे तो दूसरा ब्याह करने की भी शास्त्र में आज्ञा आती है, परंतु पुरुष ना रहे तो स्त्री के ब्याह नहीं होता, ब्याह संज्ञा ही नहीं हो, ब्याह तो होता है जहां कन्यादान होता है और कन्या वो तेल चढ़ती है, तो संतों ने कहा है कि बार बार चढ़ता न तिया कोसो तेल है, कन्या वह तेल एक बार ही तेल चढ़ती है, जो ब्याह करते हैं पहले तेल मंजन करते हैं, तेल चढ़ता है, बर कन्या के पीठ ही लगाते हैं, सब करते हैं, वो तेल एक बार ही चढ़ती है। अब विधवा हो गई तो वो जब तेल चढ़ती है दान करते हैं तो माँ बाप दोनों बैठकर चमरी में कन्या दान करते हैं, अपनी पुत्री है मैं दान करता हूं, तो दान करने की विधि आती है, माँ बाप दोनों मिलकर और दान करते हैं, वो पानी ग्रहण कहते हैं ना, पानी ग्रहण, पानी नाम हाथ, हाथ पकड़ा देते हैं, तो कन्या का हाथ लेकर और वर के हाथ में पकड़ाते हैं, तो उसमें लिखा है कि हमारी जो कन्या है वो मैं दान करता हूं, तो हमारा जो विधान है सबका सब भगवान के साथ है, कन्या दान करते हैं तो भगवान को दान करते हैं, हर एक आदमी को नहीं, इस वास्ते जब भर आता है तो माँ बाप दोनों शरण धोते हैं, जिसको कन्या देना है उसके चरण धोते हैं, तो वास्तव में तो विवाह होने पर अपने माँ बाप होते हैं और अपनी स्त्री के माँ बाप भी अपने माँ बाप ही होते हैं, भगवान राम जी कौशल्या को भी माँ कहते थे और सुनैना जी को भी माँ ही कहते थे, तो वे माँ बाप होते हैं, इस वास्ते कई बातें आती है, चार माँ बाप होते हैं जिसके वो पूरा कहलाता है, तो एक तो अपने माँ बाप, एक स्त्री के माँ बाप, ये चार माई तो होते हैं, तो माँ बाप रहा, माँ बाप है जो बेटा का चरण धोवे, ना बेटा नहीं है उस समय विष्णु रूप माना है, इस वास्ते वो संकल्प होता है, उस संकल्प में ये सर्वस्त्राम सालंकाराम लक्ष्मी रूपणी कन्याम विष्णु रूपाय बराय संप्रदे, ऐसा बोलता संसार थी, ये संकल्प होता है, मेरी कन्या है, इनके सब गहने और कपड़े खूब पहने हुए, लक्ष्मी रूप मेरी कन्या है, साक्षात लक्ष्मी कन्या है, उसका तिरस्कार नहीं आता, आजकल तिरस्कार करते हैं और बड़ा भारी अन्याय करते हैं, जो गर्भ गिरा देते हैं, ब्रह्म हत्या से दूनी हत्या लगती है जो कन्या गिराने वाले को, कन्या का दोष ज्यादा लगता है, लड़के की अपेक्षा कन्या का किराया देना बहुत बड़ा भयंकर पाप है, क्योंकि कन्या है वो अगाड़ी वंश विस्तार करने वाली है। तो कन्या वंश विस्तार करने वाली तो मनुष्यों की जड़ है खास। इतने भाई बहन बैठे हैं, हम सब के सब अपनी माँ की गोदी में आए हैं और माँ का दूध पिया है और माँ ने पालन किया है, माँ ने खाना पहनना ये सिखाया है, बैठना सिखाया, बैठना माँ ने सिखा दी, यूं उठ जाते हैं, यूं उठ जाते। तो माँ थोड़ा कपड़ा ये दिया, कपड़ा इधर दिया, पीछे दिया, इधर बैठाती है तो बैठना आता है, ये तो बैठना नहीं आता। और भोजन करना नहीं आता, माँ सिखाती है। बाल को कह जाए तुम भोजन कर ले तो माँ देती है ग्रास, फिर उनको भोजन किया तो कोई यूं करता है यूं। अब वो मुंह यूं कर, हाथ यूं कर देता है, अब यूं थोड़े भोजन में, अरे यूं नहीं यूं कर यूं। तो ये माँ सिखाती है। हमारे पहला गुरु माँ मानी गई है। तो कन्या की हत्या करना है, मातृ हत्या करनी है। दुनिया की माँ है वो माँ बनने वाली है, उसका दर्जा बड़ा ऊंचा है। आज माँ न बनकर लुगाई बनते हैं। स्त्री राम जी ने सीता जी के लिए भी कहा है, जब लक्ष्मण जी के मूर्छा हो गई तो राम जी कहते हैं कि नारी हानि विशेष क्षति नहीं, सीता अगर न मिले तो कोई विशेष हानि की बात नहीं है, ये नारी का दर्जा इतना ही है, मर जाए तो कोई बात नहीं है। जो संतान नहीं हुआ है अभी, इतने में भी ऐसी बात कहते हैं कि नारी हानि विशेष क्षति नहीं, मतलब मिले जगह सहोदर भ्राता सहोदर भाई कहाँ मिलेगा, भाई चलेगा तो कैसे मिलेगा, हमारे पिताजी भी चले गए तो भाई दूसरा मिलना मुश्किल है ना, असंभव है, कैसे मिलेगा। तो भाई की चिंता करते हैं और स्त्री की कोई परवाह नहीं है, परंतु माँ की परवाह कितनी है, माँ 10 गुना अधिक, कहेंगे 100 गुना अधिक, पिता से 10 गुना अधिक माँ होती है, कहीं कहीं 100 गुना अधिक माँ को लिखा है। जब राम जी गए कौशल्या माता के पास नमस्कार करने को, तब कौशल्या ने कहा बेटा कुछ खा लो, माँ का ये स्वभाव है, कुछ खा ले, कुछ खिला है दूं उसको, ये माँ का स्वभाव होता है। इस वास्ते जीवनो तो मारे हाथ वो भले जहरी, मारे हाथ से अमृत होता है, बदन बड़ा मीठा होता है माँ के हाथ का। 2 नंबर में स्त्री होती है और इतनी नहीं है, बहन आदि भी खिलाती है, परंतु माँ का आज का भोजन है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। तो ऐसी माँ पालन करने वाली, तो भोजन माँ सिखाती है, बैठना माँ सिखाती है। और महाराज क्या बताऊं आपको, ये माताएं जानती है, अब कृष्ण भी देखते ही हो, छोरा छोटा सा टट्टी फिरे पेशाब करे यो लकीर घर से बैठा ही हो, मार्गदेशी क्या करते हैं ये, और क्या है पशु जो है पशु की तरह, आप और हम जन्मे दिए उस समय पशु की तरह थे, माँ कहते छी छी छी, मन क्या कर दिया, अरे ये बाहर के दे, ये तो मेला है, तो धुआती माँ पकड़ रही हूँ और फिर चरण सिखावे, दोनों हाथों पकड़ रहे, वो हाथों पकड़ रहे अंगुली माँ की, माँ थोड़ी यूं करे तब हो चलता है, चलना नहीं आता, भोजन करना नहीं आता, बैठना नहीं आता, बोलना नहीं आता, माँ सिखाती है। इस वास्ते हम पूछे तुम्हारी मातृभाषा क्या है, हरे को पूछा जाए तुम मानो किस देश के हो, तो उसमें मातृभाषा क्या है, तुम्हारी माँ की भाषा, माँ ने क्या सिखाया है, तो मातृभाषा है, सबसे पहला गुरु माँ है। तो माँ जिनकी श्रेष्ठ होती है वे अच्छे महात्मा हुए हैं, जितने जितने अच्छे संत हुए, अच्छे महात्मा हुए हैं, उनका विचार कर देखो तो प्राय माताएं श्रेष्ठ हुई है, उनके बालक श्रेष्ठ हुए हैं। माता सुमित्रा क्या कह रही है लक्ष्मण जी के लिए, बेटा तुम वन में जाओ, पुत्रवती जुवती जगसोई, संसार में बेटे की माँ वही है, बेटे की माँ का आदर होता है, जब लड़का आपका ब्याह कराता है और उसके संतान हो जाए बेटा, तो उस बहू का आदर हो जाता है बहुत। बेटे की माँ होगी, अब इनको पीला उठाओ, पीठे पर बैठाओ, ये अब बड़ी हो गई है, बेटे की माँ है, तो अपने परिवार में उसका आदर होता है। तो माँ का आदर होता है, लुगाई की थोड़ा ही आदर होता है। लुगाई तो लोग बेसेव कर लेते, क्या हुआ उसमें लुगाई को आदर है? नितिरस्कार है। हमारी ये बहनों मानती नहीं, ये माँ नहीं बनती, माँ बनना बंद कर देती है, धिक्कार है उनको जो माँ बनना बंद कर दे। आपका आदर माँ के कारण सही है, तो आप माँ बनो। तो पहला गुरु माँ, वो सब शिक्षा देती है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नं त्यज मोहनिद्रां मंदाल सावाक्यमुवाच पुत्रं। मंदाल सारानी हुई है जिसने अपने बेटों को उपदेश दिया है, संत बना दिए, वृक्त बना दिए, त्यागी बना दिए। राजा ने कहा कि तू ऐसे बना दे तू राज्य कौन करेगा? तब छोटे बालक को राजगीति सिखाई, राजनीति सिखाई वे अच्छी तरह से। फिर वो जब सियाणा हो गया तो वैसे राजगति बैठा दिया और भाई हम तो जाकर के भजन करेंगे। राजा और रानी वहां से चलकर भजन के लिए निकल गए। रोजाना गृहस्थ में बैठे रहना ठीक नहीं है, तो वान प्रस्थान, और वन में प्रस्थान करे उसका वान प्रस्थ, और वन में प्रस्थान किया तो वे चले जाते गंगा जी किनारे। पुराने जमाने में गंगा जी किनारे सब संत महात्मा रहते थे, और राजा महाराजा बड़े बड़े धनी आदमी भी जब चतुर्थ अवस्था हो गई, सारे बच्चों ने काम अपना सौंप लिया, तब माँ बाप दोनों ही वहां जाकर भजन करते थे। क्षत्रिय लोग भी ऐसा करते थे। इस वास्ते उनमें एक विलक्षण कहावत थी, क्षत्रियों के लिए कहावत है कि बीमार होकर मरना है ये क्षत्रिय का तिरस्कार है, अपमान है। बीमार होकर सशक्त सक्रिय मरोगे, बीमार होकर के तो क्या करे कि वन में जाकर भजन करे, नहीं तो दुनिया के हित के लिए युद्ध करे, उसमें युद्ध में मर जाए, नहीं तप करके जंगल में मर जाए। उनकी महिमा होती थी, और घर में ही मर जाता है उसकी निंदा होती थी, घर में ही खाट पर ही मर गया। इस वास्ते एक रीत चली है, जब श्वास थोड़े चलने लगते हैं मरने लगता है तो कभी उतारो माचे, उतारो इन नेटा उतारो, और क्या अर्थ है माचे नीचे उतारने का? तात्पर्य क्या है कि खाट पर शिष्य कर मरना बड़ी निंदा की बात है, तो घर पर मरना निंदा है। अपने बूढ़े हो गए, चलो भजन श्याम करने के अपना, तो जंगल में जाकर के उठे बोले वहां खाट थोड़ा ही देता है, वो माचा सोडिया पथरनाथ सिंह शीत खान ये थोड़ी मिलती है, वहां तपस्या करनी पड़ती है, शीत काम सब सहना पड़ता है, तो वहां जाकर मारो, और नहीं तो युद्ध हो उसके सामने तलवार बजाओ, मेरी गरीबों की रक्षा करो, दुष्टों से प्रजा को छोड़ाओ, फिर वहां मर जाओ। उस मरने की महिमा होती थी। जब कृष्ण भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर के गए तो संधि उसने माना नहीं, दुर्योधन वो संधि मानने वाला नहीं, वो तो महाराज लड़ाई करने को तैयार, लड़ाई करूंगा, बिना लड़ाई सुई की तीखी तीक्ष्ण सूचिया विद्येदग्रेण केशव, सुई भी तीखी लेनी, छोटी पतली महीन सुई की तीखी नोक, इतनी टिके जितनी जमीन भी बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा। दुर्योधन सब कह दिया, अरे भाई हमारा राज्य था पहले, जुए में खेल करके हम हार गए, तो हमारा राज्य दो कि नहीं लेंगे। साफ नट गया। तो संधि का प्रस्ताव लेकर के और भगवान श्री कृष्ण गए कि संधि कर लो, लड़ाई मत करो, लड़ाई करो दोनों तरफ से मरेंगे और ठीक नहीं है उसका। और भगवान ने तो कह दिया कि अर्जुन के सामने दो हाथ करने वाला कोई है नहीं, सब मरोगे तुम। इस वास्ते हम समझाते हैं, तुम आधा राज इनका राज इनको दे दो, तुम्हारा राज तुम रखो, पहले बंटवारा हुआ हुआ ही था ही। दुर्योधन के नहीं देंगे हम, नट गए। तो भगवान पीछे आ गए तो वहां माता कुंती से मिले। जब ये पांचों का ब्याह होकर जुआ खेला, उस समय वनवास हुआ था, चार भाई थे साथ में एक द्रौपदी, इन पांचों को पहले जो लाखा गर्भ उस समय में साथ में थी माता कुंती, ब्याह नहीं हुआ था और जब वनवास हुआ जुआ खेलने पर तब साथ में रही है द्रौपदी और माताजी वहां पर ही रही। वहां पर भी विदुर जी के घर पर रही, विदुर जी देवर थे तो वो देवर माँ की तरह आदर करते थे, कुंती माता का बड़ा आदर बड़ा सत्कार किया और वहाँ माँ रही। वहीं राजधानी में जेठानी राज्य माता है गांधारी, पर गांधारी के पास नहीं रही, गांधारी के इतना स्नेह था, गांधारी की फिर भी था धृतराष्ट्र के नहीं था, और दुर्योधन को तो सुहाते ही नहीं है, पांडव और पांडव के माँ बाप सुहाते ही नहीं, वो समझे कि राज लेंगे तो इसमें तिरस्कार करते थे। गांधारी आदर करती कुंती का, गांधारी है वो तो आदर करती थी, परंतु दुर्योधन डर रखता था। तो माता कुंती ने कहा कि मैं नहीं रहूं यहाँ, यहाँ राजधानी में नहीं रहूं, तो विदुर जी के घर पर रही। तो वहां पर विदुर जी के घर पर राम जी गए हैं, वहां भोजन किया है, दुर्योधन के भोजन नहीं किया,
कृष्ण भगवान
गए, क्या हमारे राम जी कृष्ण जी किए, जो पुण्य निकल गया भैया कृष्ण भगवान गए। तो विदुर जी का भोजन किया, कुंती माता से मिले, कुंती माता से पूछा कि माँ बुआ जी क्या करना चाहिए अभी। कुंती भगवान को जानती थी, युधिष्ठिर महाराज इतना नहीं जानते थे, भीष्म जी और कुंती और विदुर ये भगवान को जानते थे, इतना अर्जुन नहीं जानते थे, इतना भगवान क्या है कैसे है कुंती माता खूब जानती थी, गोदी में खिलाया भगवान को प्यार से, नचाती खिलाती थी, धुआ भी है, तो इतना तत्व जानती थी वो कि साक्षात परमात्मा ईश्वर है। तो उनसे पूछा तो कहते हैं कि यदत धनंजय वाच्यो नित्योद्युक्तो भृगोदर यदर्थं क्षत्रिया सूते तस्य कालोयम आगतः। माता कुंती कहती है क्या ऐसे युधिष्ठिर से कहना और विशेष करके और अर्जुन से कहना और विशेष कहना भीमसेन को एतद् धनंजय वाच्य और नित्योद्युक्त नित्य उद्युत कर्म कैसे तैयार रहता युद्ध के लिए, ऐसे भीमसेन से कहना कि बेटा जिस दिन के लिए वीर क्षत्राणी पुत्र पैदा करती है वो दिन तुम्हारा आ गया है, दुष्टों का विनाश करके पृथ्वी की रक्षा करनी प्रजा की रक्षा करनी ये काम क्षत्रियों का होता है, यदर्थं क्षत्रिया सूते जिस दिन के लिए वीर क्षत्राणी पुत्र पैदा करती है वो तुम्हें खिलाती है जिसके लिए वो तुम्हारा दिन आ गया है, अब दुष्टों के पंजे से राज्य को छुड़ाओ और प्रजा की पालन करो ठीक तरह से। ऐसे माँ ने बड़ा जोर से कहा, ये माता बड़ी वीर माता थी, वो मामूली नहीं, कुंती माँ जिसके युधिष्ठिर गोद में खेले कितने ऊंचे दर्जे की थी, धर्मराज युधिष्ठिर उसका दूध पिया है उस माँ की गोदी में खेले है, कितनी ऊंची माँ है, कितना आदर और माँ का कितना आदर करते थे। युधिष्ठिर महाराज को भूल में निकल गया कि माँ हम चीज लाए हैं कि भाई पांचों ही लो, कि माँ ये राजा द्रौपदी की कन्या जीत कर लाए हैं तो मेरी बात सच्ची कैसे होगी, कि हम सच्ची करेंगे पांचवें क्या करेंगे, नई बात दुनिया से नई बात माँ के मुंह से निकल गई, माँ का वचन शाली नहीं जान देंगे, माँ ने कह दिया पांचवें लोग पांचवें ही करेंगे। द्रौपदी ने विरोध किया सब कुछ किया वो जानते हैं बहुत आप लोग, तो माँ का वचन इतना पालन करते थे कभी माँ की बात वो इधर उधर टालते नहीं, अब माँ ने कह दिया युद्ध करो तभी युधिष्ठिर युद्ध करने थे, युधिष्ठिर ने कह लिया मैं युद्ध करूंगा ही नहीं जंगल में ही रहूंगा कोई बात नहीं आई मैं प्रजा को किसी संतान दुख दूं, ऐसा विचार था। माँ ने कह गया बस अब बेटा मारो इन दुष्टों को अब कोई काम नहीं है, तो माँ ने ऐसा उद्देश्य दिया तब महाराज मान कहना मान करके विरोधन आए दिया है। तो गृहस्थ का धर्म है जब क्षत्रिय धर्म है वो कहते हैं यदर्थं क्षत्रिया सूते तो किस लिए जो पैदा करती है पुत्र, वो घर में खाट पर शिशिक शिशिक मरने के लिए नहीं पैदा करती है। प्रजा की रक्षा करते हुए लड़ करके मर जाओ, और नहीं तो जंगल में जाकर भजन कर स्मरण करके और भगवान को याद करो, जिससे कल्याण हो जाए। पांचों पांडव युद्ध में तो मरे नहीं, जीत हो गई इनकी सब की। तो ये हिमालय में जाकर के वीर संन्यास लिया, वीर संन्यास पृथ्वी की प्रतीक्षा करके उत्तर की तरफ चले। बस पांचों पांडव और द्रौपदी ये वीर संन्यास लेकर चले हैं। वीर संन्यास वो होता है कि चलते ही रहे, रात हो चाहे दिन हो चाहे सुबह हो शाम हो, चलते ही रहे। चलते चलते जहाँ हिमालय में गए, गिर पड़े तो गिर पड़ा, वो कौन गिर गया क्या कोई परवाह नहीं, चलते चलते ऐसे। तो द्रौपदी गिर गई, नकुल सहदेव अर्जुन भीमसेन सब गिर गए, पूछते रहे, बातें होती रही, ये सुनाई हुई बात तो है। तो ऐसे गिरते रहते, ऐसे फिर अंत में युधिष्ठिर महाराज के लिए रथ आया था। तो जिस दिन के लिए क्षत्राणी पैदा करती है, तो शिशक शिशु मरने के लिए नहीं करती है वीर क्षत्राणी बात पैदा। तो अपना काम है ऐसा वन प्रस्था करता, तो सबके माता पिता गृहस्थ है, और गृहस्थ ही सबका पालन करने वाला है, पैदा करने वाला है, पालन करने वाला है। इस वास्ते आप गृहस्थ हो, इनको लोग चाहिए। एक एक धर्म मुख्य है, ब्रह्मचारी का गुरु आज्ञा पालन, गृहस्थ का अतिथि सत्कार, और वानप्रस्थ में तपस्या, और सन्यासी होते ब्रह्मचिंतन। ये खास बातें हैं इन धर्म में पालन करने की। तो क्षत्रिय गृहस्थों के लिए अतिथि सत्कार है, जब रसोई बन जाए उस समय आवे तो भगवान के भोग लगा दे, परिपेश्व कर देवे, और फिर कोई आ जाए तो भिक्षा देवे। भिक्षा दिए बिना भोजन नहीं करते गृहस्थ, एक गाय दूहे इतनी देर प्रतीक्षा करते हैं, कोई आ जाए भिक्षु आ जाए तो उसको दे करके फिर भोजन करते हैं, नहीं आवे तो रसोई में से जितना देना है उतना पहले निकाल दे, वो निकाल करके पीछे भोजन करे, क्योंकि भोजन करने में देना है तो देव आया नहीं अतिथि क्या करें, तो वो फिर भोजन करते हैं। तो अन्नदान है वो महादान है, भोजन दान बना बनाया, रोटी साग दाल भात खिचड़ी कढ़ी जो कुछ हो घर में बना बनाया भोजन, जैसा अपने करते हैं वैसा ही देने का अधिकार ऐसे भोजन का है। आप पुरानी रोटी कल ही परसों की पड़ी और दे दो, वो देने का अधिकार नहीं है। साग दुर्गंध आने लगी, कल का बनाया हुआ है वो साग दे दो, देने का अधिकार नहीं। ऐसी रोटी आप नहीं खाते, आपके काम नहीं आती, ऐसी चीज बाहर जाकर रख दो, वो फिर कोई खाओ कोई करो वो दोष नहीं है, पर देने का अधिकार वो ये जो आप खाते हो जैसे आप अन्न करते हो। तो ये घर भी करती है दो तरह की, एक तो जिनको साधु संत अच्छा मानते हैं उनके लिए बढ़िया बनाती है तो ये भी अन्याय है, और बनी हुई जगह से रद्दी श्रद्धि देते ये भी अन्याय है। जैसे अपने भोजन करते हैं ऐसी सीधी शादी साग रोटी वो देना, ये कृष्ण का धर्म है। बढ़िया बनाना भी अच्छे नहीं है और घटिया देना भी अच्छा नहीं है, तो वो अतिथि सत्कार करना तो गृहस्थ का खास धर्म है। घर पर कोई भूखा आ जाए रोटी खाओ भाई, रोटी राबड़ी अपने है जैसे घर में, रोटी साग जो कुछ दे दो, इससे खास धर्म है। तो इसमें गृहस्थों का विशेष रोजन ऐसा होना चाहिए। भिक्षु जाए भिक्षु के लिए भी नियम बताए हैं। आजकल हम तो भाई भोजन करते हैं बढ़िया, भिक्षु का नियम है कि सब भोजन कर ले, विधु में जिंगारे भुक्तवत जने ऐसा आया है, चूल्हे में आग बुझ जाए, रसोई सब बन चुकी बुझ जाए, आग भी बुझ जाए, धुआं नहीं होता है, और लोग घर वाले जब भोजन कर ले और बर्तन मांज मंजा साफ कर उल्टा कर दिया रख दिया है, ऐसे समय में भिक्षा को जाए जो बची हुई भोजन करे। भोजन बचा हुआ होता है वो अमृत के समान होता है, यज्ञ शिष्टा संतो मुचनते सर्व के विषय ही, भोजन बचा हुआ होता है वो अमृत के समान होता है, यज्ञ शिष्टा संतो मुचनते सर्व के विषय ही, यज्ञ शिष्टा यज्ञ से शेष रहा हुआ वो भोजन अमृत के समान होता है। यज्ञ शिष्टा अमृत भोजो जानते ब्रह्म सनातनम, दो जगह आया है। यज्ञ शेष भोजन करने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो वहां साधनों की यज्ञों की बात कही है, यहाँ रसोई की बात बताई तीसरे अध्याय में, वो चौथे अध्याय में है। तो यज्ञ शेष रह जाए उस बचा हुआ अन्न अमृत के समान होता है। हमारी माताएं पहले से ही सबके भोजन कराने के बाद भोजन करती थी। युधिष्ठिर महाराज जब वनवास में गए तो प्रजा साथ हो गई, बहुत से ब्राह्मण भी साथ में हो गए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, महाराज यहाँ तो हम ब्राह्मणों की सेवा करते थे, राजा थे, अब जंगल में कंदमूल फल खाकर हम रहेंगे, अब सेवा हम कर नहीं सकेंगे। कि नहीं, हमारी सेवा नहीं, हम आपने आप खा लेंगे, मान हम रहे तुम्हारे साथ दुष्ट दुर्योधन के साथ, हम नहीं रहेंगे यहाँ इस राज्य में, तुम्हारे साथ रहेंगे। हजारों साथ में हो गए। युधिष्ठिर मन में आया, भाई ये तो भोजन ब्राह्मण तो भूखे रहे, मैं खा लूं कैसे। तो धौम ऋषि थे, उस धौम ऋषि ने मंत्र बताया, सूर्य भगवान का स्तोत्र वन पर्व में आता है, ये स्तोत्र पढ़ो और सूर्य की उपासना करो। तो वो स्तोत्र पढ़ा रहे, वैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने उपासना करी। सूर्य भगवान प्रकट हुए, बोल क्या चाहते हो। कि महाराज ये चाहता हूँ कि मेरे जितने आगे सबको भोजन का हूं, मैं गृहस्थ हूँ, वन में रहता हूँ तो क्या हुआ, हो तो गृहस्थ ही, द्रौपदी साथ में है तो भोजन कराऊ। तो उन्होंने एक बटलोई दी, एक तपेली दी, संस्कृत में स्थाली कहते हैं, स्थाली, वो थाली का नाम नहीं बटलोई का नाम है, बटलोई दी कि ये तुम रखो, इनमें सुबह बना दो भोजन, जितना बना दो उतना हो जाएगा। फिर पीछे पीछे कौन भोजन करता है, कि पीछे पीछे द्रौपदी भोजन करती है, तो द्रौपदी के भोजन करने पर इसमें नहीं रहेगा, और उसके पहले लाखों करोड़ों को जिमा दो, अक्षय पात्र है वो, अक्षय पात्र था, जितना जिमा वो भोजन करा दो। तो सूर्य भगवान से वो मिला तो ब्राह्मणों को खूब भोजन कराते, सबको ही कोई आ जाओ अतिथि आ जाओ, ब्राह्मणों को सबको भोजन कराया करते, सबके बाद में द्रौपदी भोजन करती। तो घर की मालकिन होती है, वो सबसे पीछे भोजन किया करती है, बचा हुआ अमृत होता है, और वही भोजन का बचाया जाए तो वो अमृत नहीं जहर की तरह हो जाता है। ब्राह्मण भोजन किया, बढ़िया चीज बनी, खीर बढ़िया बनी, साग बढ़िया बने, रोटी बढ़िया बनी, तो पीछे हमारे माल के पीछे खाएंगे तो खीर की मलाई मलाई ऊपर से ले ली, साग भी घी वाले पर रख दिया, रोटी वैसी पीछे रख दी, माल बढ़िया बढ़िया चीज ले लेते हो, तो बचाया हुआ अमृत जहर की तरह होता है, बचा हुआ होता है अमृत की तरह होता है। बच जाए उसमें क्या होता है, कोई साग रहा कोई साग नहीं बचा, कोई सामग्री रही कोई सामग्री नहीं बची, और बचा तो कैसा है, दाल बचे तो दाल में नीचे कंकर रहता है, कांकरा नीचे ही रहे तो कांकर वाली दाल मिलती है, और खीतरा खिचड़ी हो जाए नीचे खुरसन लग जाती है, जल जाती है, वो मिठाई मिलती है, रोटी में भी ऐसी ऐसी परोस दी नीचे रहेगी वो रोटी मिलती है। तो यज्ञ शिष्टाश्र महाराज, वो यज्ञ शेष है, वो अमृत भोजन है। तो पीछे कौन के द्रौपदी, तो वे द्रौपदी भोजन नहीं करेगी तब तक कितना ही भोजन कर जाए, द्रौपदी भोजन कर लेगी फिर उस दिन कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन जब इसे पलाओ बनाओ फिर ठीक है, वैसे ही इस तरह से भोजन करा देते। तो अतिथि सत्कार करना, आने वाले भोजन करने वाले उनको भोजन कराना, ये खास गृहस्थ का धर्म है, खास कर्तव्य है, कभी विचित्र बात है, गृहस्थों का धर्म है ये। तो बड़ी बनाई रोटी, बड़ी बनाई साग दाल भात जैसा अपना दे दिया, पाओ मेरा सब पाओ मौज मौज से। तो गृहस्थ का खास धर्म ये है, तो गृहस्थ को ये बात ख्याल रखनी चाहिए। ऐसा तक लिखा है कि कोई हो अतिथि, यदि वह पितृघात का बाप ने मारने वाला भी आ जाए, बैरी जो हमारे बाप को मारा है जिसने, पर रसोई बनी आ जाए तो उसको भी भोजन दे देना, हम बैर नहीं, भोजन में कोई आ जाए उसको भोजन देना, खाने के लिए देना चाहिए उसको। तो कितनी बिल्कुल बात है, अन्नदानम महादानम है ये, विद्यादानम ततो अधिकम, जो विद्यादान है, जैसे व्यापार आप करते हो और किसी को व्यापार सिखा देते हो,
महाजनी पढ़ते हो और वो किसी को पढ़ा देते हो तो वो महादान से भी बढ़कर दान है, क्योंकि भोजन से तो एक बार तृप्ति होती है, विद्या पढ़ा दी उम्र भर अपना और कुटुंब का पालन करता है तो उसका बड़ा महात्म है, और उससे भी ज्यादा ब्रह्म विद्या का महात्म है जो कभी जन्म लेना ही नहीं पड़े, कल्याण हो जाए, ऐसे इसका बड़ा भारी महात्म है। तो देने का महात्म है, ये कृष्णों के लिए खास है, कृष्णों की जिम्मेवारी। दूसरा बेचारा कहां से गए, और कृष्ण में रहते हुए भगवान कहते हैं जहां आप रहते हो भाई बहन अपने अपने धर्म का अपनी मर्यादा का पालन करते हुए, गृहस्थ का धर्म उसका पालन करो, अपना जो अतिथि सत्कार आदि ये धर्म पालन करो, शास्त्र ने आज्ञा दी वो धर्म पालन करो, संत महात्मा पुरुष कहते हैं वो धर्म पालन करो, ऋषि मुनियों ने कहा है वैसे धर्म पालन करो। पर उसमें एक बहुत विलक्षण बात बताई गीता ने, सबका पालन पोषण करे गृहस्थ ब्रह्मचारियों का, गृहस्थ भानुप्रस्थों का, सन्यासियों का, तो वो ब्रह्मचारियों का और गृहस्थों का इनका नाम नहीं लिया है, जिससे संसार पैदा हुआ और जिस परमात्मा से संसार सब व्याप्त है और जिस परमात्मा की शक्ति से ये संसार काम करता है, उस परमात्मा को भोजन कराओ। कोई भी आ जाए उसको परमात्मा का स्वरूप समझ के भोजन कराओ, कुत्ते को रोटी डालो तो भी उसमें भगवत भावना से ये भगवान आए हैं, कुत्ते रूप से भगवान आए हैं, अतिथि रूप से भगवान आए हैं, स्वतिथि सर्वभाजन अतिथि संपूर्ण का स्वरूप होता है ब्रह्मचारी और सन्यासी, ब्रह्मचारी यथेश्वर विद्यार्थी गुरु पोषक और विद्या पढ़ने वाला, गुरु की सेवा करने वाला और रस्ते चलता हुआ कोई राहगीर आ जाए बताऊ, और क्षीण वृत्ति जिसका धन नष्ट हो जाए, आग लग गई सब जल गया कुछ नहीं रहा, वो भी ब्राह्मण की तरह अतिथि होता है, उसको भी भोजन देना। ये सब सब बताए अतिथि, ब्रह्मचारी यथेश्वर विद्यार्थी गुरु पोषक अध्वगा रस्ते चलता चलता बटा हुआ अध्वगा क्षीण वृत्ति सडे थे भिक्षु का स्मृता, छह ये भिक्षु है इनको अन्न देना, पास में कुछ नहीं रहा है तो उनका पड़ा है अन्न है सब देना, गृहस्थ का काम है संग्रह करना, गृहस्थ के लिए बताया है और बोलिए संग्रह नहीं, ब्रह्मचारी संग्रह नहीं करे, वानप्रस्थ संग्रह नहीं करे, सन्यासी भी संग्रह नहीं करे, गृहस्थ संग्रह करे किस लिए, कश्यप का भरण पोषण करना है, तो भरण करते हुए सेवा करते हुए स्वकर्मणा तमभ्यर्च्या अपने कर्मों से भगवान का पूजन करे, साक्षात भगवान को भोजन करावे, सिद्धि विंदति मानो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, घर में रहते हुए गृहस्थ में रहते हुए अपने कर्म तब ठीक पालन करे, तो घर में रहते हुए साधु सन्यासी है वो, क्यों त्याग है, साधु सन्यासी में त्याग होता है, उनके त्याग है और उपकार भी है, त्याग तो हमने छोड़ दिया वो त्याग हो गया और दूसरों को भोजन कराया ये भी त्याग हुआ, त्याग में दो बात हुई, हमारे त्याग दूसरे की तृप्ति, इस वास्ते इसका बड़ा भारी महात्मा है। अपने कर्तव्य का अपने धर्म का पालन करे, कन्या अपना धर्म पालन करे, सुहागन अपने धर्म का पालन करे, विधवा अपने धर्म का पालन करे, अपने अपने कर्तव्य का पालन करे, शास्त्र जो आज्ञा दी है वैसी, तो विधवा हो जाती है स्त्री उसे दो चार पांच सात बालक हो गए, अब वो विधवा हो गई तो विधवा होने के बाद ठीक विधवा के धर्मों का पालन करे तो उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी की गति मिलती है, जैसे भीष्म जी आबार ब्रह्मचारी रहे, इस तरह से पांच सात बालक होने के बाद अगर वो विधवा हो गई, विधवा होने पर वेदव्य का धर्म पालन करे, साधु सन्यासियों की तरह त्याग से रहे तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी की गति वो होती है, जैसे भीष्म जी आबार ब्रह्मचारी रहे, पांच सात बालक हो गया उसके, परंतु फिर वो विधवा ऐसी होते हैं, अब विधवा का ब्याह करो, विधवा का ब्याह हुआ करते विधवा का नाता हुआ करता है, ये अनादिकाल से चला आया है कि विधवा का ब्याह नहीं होता था, एक दुष्ट राजा हुआ बैन, जिसकी सुना बैन ने तू कथमा पीना, मधुसूदनाचार्य लिखते हैं कि जितने के भगवान के साथ बैर करने वाले, भगवान के साथ प्रेम करने वाले, भगवान से भयभीत होने वाले, द्वेष रखने वाले, सबका कल्याण हुआ, इनमें सबको बताया कल्याण, बैन ने तू कथमा पीना, बैन का उद्धार नहीं हुआ, क्यों, ना तो भगवान साथ बैर रखता था, ना भयभीत होता था, ना सेवा करता था, भगवान साथ संबंध ही नहीं। उसका संबंध था पाप के साथ, अन्याय के साथ। उसको ऋषियों ने भस्म दे, श्राप दे करके मर दिया उसको। उस बैन ने ये संग चलाई थी। मनुष्य स्मृति में आता है, बैन ने चलाया कि विधवा का ब्याह करो, विधवा का नाता करो। तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीनों ने नहीं माना, शूद्र लाके ने बैन माना। तो उनमें नाता होता है, अभी पहले भी होता था, अब तो बाणियार ब्राह्मण ये भी नाता करने लग गए। महान अशुद्ध धन होता है उनका, स्त्री वो अशुद्ध है। अब जो पैदा हुई थी उस कन्या को तो पिता ने दान कर दिया, और दान लेने वाला पति वो मर गया। अब वो तो बिल्कुल कोई काम की नहीं, कौन दान करे? ब्याह होता है उसमें कन्यादान होता है, वे कन्यादान कौन करे? कन्या है ही नहीं किसी की, दी कैसे जाए? और ब्याह एक बार ही होता है, ये बार बार होता है, वो नाता होता है, उसका नाम ब्याह नहीं होता। अब लोग बंदे ब्याह कहने लग गए, ब्याह कैसे होगा उनका? वो तो वास्तव में व्यभिचार है। इस वास्ते ऐसी मर्यादा भंग नहीं करना। आजकल लोग उसको ठीक मांगने लग गए हैं। लोग कहते हैं कि जो न रह सके तो फिर उसे दूसरा ब्याह कर दो, और न रह सके तो आज क्या दशा आई कि भूखा नहीं रह सके तो कानून बढ़ा दो, भोजन करो। कानून नष्ट क्यों करो? करे जी ब्याह, अपना उपवास करे, करो न करे मर करो। ऐसे वेद धर्म का पालन करे, विधवा करो, पर कानून बना दो इनका ब्याह होना चाहिए। सब मिलकर करते हैं, वैसा करने वाले कलयुग भगवान के एजेंट हैं ये, कलयुग फैलाने वाले, पाप करने वाले, अन्याय करने वाले। इस वास्ते ऐसा न करके अपनी मर्यादा में चलो। अपने मर्यादा में चलते हुए गृहस्थ का भी कल्याण हो जाता है, और विधवाओं के लिए भी। कितनी बड़ी बात बताई है, आबाल ब्रह्मचारी जिस गति हो जाए उस गति को प्राप्त होने वाली, उसको महान पाप में लगा देना, ये माँ बाप का सास से बढ़ाना किसी का काम नहीं है। ठीक रहे लगाने वाले लेने वाले सब जाएंगे नरकों में। मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उनके नरकों के लिए आप क्यों करो? नरकों को नरकों में तो मत भेजो, कृपा करो जो कि नरकों में जावे नहीं जावे, ऐसे ऐसे है। ये जो परिवार नियोजन लगा है, इससे चरित्र भ्रष्ट होगी दुनिया। विधवा वीर, कन्या वीर, विवाहता वीर, इससे नष्ट हो गए कि संतान जन्मेगा ही नहीं। खुला व्यभिचार होता है, बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। ये वो तीन बातें बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक तो ये परिवार नियोजन जिससे व्यभिचार फैला है, एक चक्ष अधिक बधाया जिसे झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी सब उसमें होती है छिपाने के लिए। अधिक पैसा, अधिक कानून बनाने देने से राज के घर में ऐसा पैदा नहीं जाएगा, वकीलों के घर में जाएगा, इधर छिपाने में जाएगा, राज ज्यादा नहीं सहेगा। और उचित कर हो तो राजा के भी ज्यादा होता है, प्रजा भी सुखी होती है। आज प्रजा भी डर पर रहती है, एक इन पर जो इंक्वायरी आ जाए एकदम तो धन लूट कर ले जाए। जैसे पहले डाका पड़ता था, वे लूट ले जाते हैं, डाका पड़ता है तो राज से ही जाकर रो कर कहते हैं कि हमारे घर में डाका पड़ गया। अब राजा ही डाकू हो जाए किसको कहें, कहाँ रोवे? रोवने जगह ही नहीं रही किसी के सामने, वही डाका पड़ता है, अचानक आकर लूट लेते घर का। तो ये राजा का काम नहीं है, डाकुओं का काम है। तो ये एक, एक चीज, एक सब खाओ, सबके साथ में खाओ पियो, सबके साथ ब्याह करो। महान एक पशुपणों सिद्ध कर दिया इस तरह से, उनके छुआछूत मेटो ऐसा करते थे। अंतर्राष्ट्रीय पत्र में छुआछूत मिटाने की बात लिखते थे, पर अब रोग छुआछूत से ऐसा पैदा हुआ है कि वो हो जाए तो उसकी दवाई नहीं है, मरेगा। तो वो छापना बंद कर दिया है। आप लोगों के सामने सामने की बात है, सफा हमने पढ़ा है, आजकल नहीं लिखे। आज छुआछूत मिटाने की कोई बात नहीं कहते, क्यों? छूत का रोग है वो विदेशों में था, यहाँ भी आ गया है। विधवाओं को, इन वेश्याओं पर रोक लगाई कि ये यहाँ रोग फैला देगी। कोई पुरुष हो गया से बाहर का आवे तो उसकी रक्षा करनी चाहिए कि हमारे रोग नहीं फैले। वो रोग होता है तो वो आदमी मरता ही है, दवाई है नहीं उसकी, ऐसा छूने से रोग फैलता है। वो छुआछूत मेडिकल सबके साथ खाओ, सबके साथ सेव। बड़े बड़े नेता भी कहता है, कोई ब्राह्मण है वो चमारी से करे, चमार कहीं बामणी से ब्याह करे तो आशीर्वाद देंगे, वो आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा भ्रष्ट हो जाए उसको। जो आगे वर्ण शंकर पैदा हो, बाप दूसरे वर्ण का, माँ दूसरे वर्ण की, तो पैदा क्या होगा? वर्ण शंकर होगा। तो ऐसे आदमी अरे वो वर्ण शंकर को रीस कर जाए, लड़ाई करने लग जाए। आप लड़ाई क्यों करते हो? आप तो वर्ण शंकर सृष्टि पैदा करने वाले हो, विधवा विवाह करने वाले हो, आप वर्ण शंकर के बाप हो महाराज, वर्ण शंकर पैदा करने वाले, रीस क्यों करनी चाहिए? सौर्य शंकर जगह हम तो व्यभिचार और वर्ण शंकर पैदा करने वाले हैं, ऐसा करना चाहिए। भागलपुर की एक लड़की ब्राह्मणों की ऋषि के साई थी, तो वो कहती थी कि तू विधवा होगी तू ब्याह कर ले दूजा। लोगों ने बहुतों ने कहा तो वह जवाब दिया कि विधवा को ब्याह करना ठीक है तो थारी माँ बैठी है विधवा, पहले तो मेरे पास लिया एक बनो पींद लिया भाई वास्ते, बस मैंने कही बढ़िया काम है थारी माँ माँ ने पढ़ना, दूसरी थारी बहन बैठी विधवा बहन ला चोखो काम है तो माँ शुरू कर। अरे पूरे को मैंने क्यों तेरे को ले जावे? वो भी मैंने ऋषिकेश की बात है भागलपुर की ही, तो कहते भाई मैं चोखो जवाब दियो अशु जवाब दियो विधवा ब्याह करना होता है बढ़िया चीज है तो घर में तो आप पहले माँ ने बोलना हो, पहले माँ थारी विधवा है कि नहीं स्वागत है क्या विधवा ब्याह थारी मारू ब्याह कर पहली लापनो कैसे चुप हो गए। ऐसी बात है भाई पाप की बात है, आज पाप की बात का अनुमोदन करने वाले बहुत पाप करने वाले होंगे, पाप का प्रचार करने वाले पापी होंगे, गीता का प्रचार करने वाले पुण्य के भागी होंगे कल्याण होगा, भगवान नाम का प्रचार करने वालों का कल्याण होगा, यानी पापों का प्रचार करने वाले पापी होंगे, कृत कार्य अनुमोदित पापों के बीच में अनुमोदन करके उसमें लगाने वाले होते हैं। इस वास्ते अपने शांति से भाई भगवान के नाम का जप करो मर्यादा करो तो सकर्मणा तम अभ्यर्च्य। गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपने शुभ कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करो, भगवत बुद्धि से दो, अतिथि आया है साक्षात भगवान आ गए ऐसा समझ कर सेवा करो तो गृहस्थ में रहते हुए कल्याण हो जाए। सुधनम स्वयोषिति रति साध्या परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानं गृहे साधो संगमोपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम को धन बताया, सानंदम सदनम घर जो आनंद रूप है उसके घर जाओ तो आनंद आता है प्रसन्नता होती है। सुधाश्र सुधे पुत्र ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि वाले माँ बाप की आज्ञा पालन करने वाले धर्म की मर्यादा में रहने वाले कांतान दुर्भाषणी स्त्री है वो कड़वी बोलने वाली नहीं, मीठी बोलती ताड़ना करो तो भी मीठी बोलेगी कड़वा बोलने वाली न हो। शांतान दुर्भाषणी सन मित्रम अच्छे मित्र हो और अच्छा सुधनम सस्ती सारी कमाई पुण्य की कमाई अपनी हक की अपने पास में संपत्ति हो। सुधनम स्वयोषिति रति अपनी स्त्री स्त्री है दूसरी सब माँ बेटी बहन है ऐसा जिसका भाव है और आज्ञा परा सेवका सेवक सब आज्ञा के पालन हाथ मांगे रहते हैं जो काम किया चराचर सेवक कर देते हैं। आतिथ्यम शिव पूजनम भगवान शंकर का रोजाना पूजन होता है अतिथि सत्कार होता है और बड़े बढ़िया भोजन मिष्टान्न पान गृह ऐसा धर्म बनता है और साधु संग उपासते महात्माओं का संग करते हैं सत्संग होता है ऐसे गृहस्थी धन्यो गृहस्थाश्रम उस गृहस्थाश्रम को धन्यवाद दिया है। तो इस तरह से अपने धर्म का पालन करो कैसी एक मौज की बात रहे कितना आनंद रहे। गृहस्थ में रहते हुए कल्याण हो जाए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता सीधा है। यूं नहीं भाई गृहस्थ हो फिर साथ बाणवस्थ हो फिर सन्यासी हो पीछे जाओ, ये सीढ़ियां भी है इन सरसों है और जहां से चाहे नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाए और गृहस्थाश्रम में ठीक अपने धर्म का पालन करे, स्त्रियां अपना धर्म पालन करे स्त्रियों का कल्याण हो जाए, कन्या अपने धर्म का पालन कल्याण कल्याण हो जाए, विधवा अपने धर्म का पालन विधवा कल्याण हो जाए, सुहागन अपने धर्म का पालन करे तो उसका कल्याण हो जाए। गृहस्थी साधु कोई कान हो अपने ठीक मर्यादा पर रहते हैं और भगवान को याद करते हैं उनका कल्याण होता है। इस वास्ते भाइयों को बहनों को चाहिए कि अपने धर्म का पालन करो और उत्साह रखना। उत्साही आदमी के लिए कल मैंने सुनाया था ना सात गुण होता है तो सिद्धि स्वयं ही आत्मनिवास है तो सिद्धि है लक्ष्मी जी है वो रहने के लिए आती है। ऐसे लक्ष्मण अच्छे लक्ष्मण होते हैं, उन घरों में लक्ष्मी स्वयं आती है, धन आता है, संपत्ति आती है, वो सबका आदर सत्कार होता है, लोग सब आदर करते हैं उसका, जो अपने धर्म में ठीक रहता है। साधु अगर धर्म पालन करे तो श्रेष्ठ हो जाए, गृहस्थी अपना धर्म पालन तो श्रेष्ठ हो जाए, वानप्रस्थ अपना धर्म पाले, ब्रह्मचारी अपना, बड़ा कौन है जो अपने धर्म का पालन करे। और अपने धर्म का पालन नहीं करता वो चाहे ब्राह्मण हो साधु हो, वो नीचा हो जाता है। दुनिया में भी ऐसी बात है, शास्त्र में भी ऐसी बात है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, अपने जिम्मेवारी का पालन नहीं किया तो वो श्रेष्ठ नहीं रह सकता। इस बात का बड़ा कौन है? गृहस्थ गृहस्थ का धर्म पालन के पड़ा, साधु साधु का धर्म पालन करे वो पड़ा, कन्या कन्या का धर्म पालन करे वो पड़ी, विधवा विधवा का धर्म पालन करे वो पड़ी। संबंध जितने गए माता पिता आदि, और जैसे माँ है, बाप है, काका है, बाबा है, अपने बड़े पूजनीय आदरणीय है, तो वे भी अपने धर्म का, हम भी अपने धर्म का पालन करें, सुहागन भी अपने धर्म का पालन करें। सुहागन ये तनुकर फल विषय न भाई, विषय ये फल नहीं है। आज परिवार नियोजन का और विधवा का तात्पर्य भोगों में लड़ते पते रहना, परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए, कहीं कल्याण न हो जाए, जोर से कल्याण की बाधा देने वाला आज प्रचार हो रहा है, पापों का प्रचार हो रहा है। मेरे देखते देखते कितना दुनिया का स्तर गिर गया। पहले कोई झूठ खबर करता, कोई नई झूठी बही लगा देता, कोई नया पुर्जा झूठा लिख करके दे देता, तो कहते राम 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 राम, धोड़े पर कालो कैसे लिखा, धोड़ी मनु धोड़ी गाय, कालो मनु छुरी, झूठ लिखते कागज के ऊपर तो उसको गाय पर छुरी मराया, जैसा पाप मानते थे राम राम गाय पर छुरी करे ऐसा। आज वही दूजी बनती है, खास लोग मैं सब वो दूजी है, और इनकम टैक्स में दिखाने की वही दूजी बनती है, एक पुर्जा बनता है उसमें, आज वही वही ऐसी बनती है, और गाय पर छुरी होती है ऐसी, धोड़े पर कालो, तो भाई थोड़ा बचो। इस समय में जो धर्म का पालन करता है, जो शक्ति बोलता है और खरे कमाए खाता है, वो बड़ा संत महात्मा की तरह है, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, अपने कर्म में अपने धर्म में ठीक रहता है, वो संत महात्मा हो जाता है, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान हो जाता है, कल्याण हो जाता है। कल्याण के लिए और जगह नहीं, भगवान का सीधा मार्ग हमारे यहाँ से, ब्रह्मचारी का भी सीधा मार्ग है, गृहस्थ का भी सीधा भगवान का मार्ग है, वानप्रस्थ का भी सीधा है, सन्यासी का भी सीधा मार्ग है, सबके परमात्मा परमात्मा है, तो सब परमात्मा की संतान है। अपने कर्तव्य का ठीक पालन करने वाला छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। तो बहनों माता ने जो अपना कर्तव्य पालन करे, तो गृहस्थ का पालन करना ठीक तरह से, गृहस्थ सबसे बड़ा है, ये माँ बाप है सबका उत्पन्न करने वाले। अगर आप ही अपना धर्म नहीं पालन करोगे तो हम कहाँ से करेंगे? ये हम तो भिक्षा के लिए कह देते हैं, जिन लोगों के घरों में गर्भपात होता है उस घर की भिक्षा मत दे दी भाई। ब्रह्म हत्या हत्या का जो यत्पात ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात ने, ब्रह्म हत्या का महापाप बना है, बड़ा भारी पाप, वो पाप उसे दुगुना पाप होता है गर्भपात करने का। अरे कन्या के पाप, कन्या हो गए उसका गर्भपात करना और ज्यादा पाप है, विशेष पाप है, क्यों? वो मातृ हत्या है, पुरुष की हत्या तो पितृ हत्या करो पुरुष की हत्या है, और कन्या की हत्या कर देना मातृ हत्या है, बड़ा भाई घोर पाप है। इसे हमने पुरुषों में लिखा है कि घोर पाप से बचो, महान पाप से बचो, ऐसी बात लिखी है, वो पुस्तक आप पढ़ो, दो पुस्तक है ऐसे, इन महापाप से बचो, दूसरी घर कह रहे हैं एक तो महापाप से बचो, ऐसा लिखा है। तो पुस्तकों को पढ़ो आप लोग, देखो उनमें विचार करो, इस पर और भी लिख रहे हैं हम, और विचार है वो भी लिखा तो है, लेकिन अभी छपने में नहीं आया है, अभी बताएंगे आपको, आंख खुल जाए आपकी। एक दिन यहाँ कहा था ना कि ज्यादा संतान बैठेंगे वहां मांगेंगे कहाँ, आपने सुना ना? अरे थोड़े आदमी हो तो हर कौन पाएगा, और थोड़े आदमी हो तो सुखी हो जाएंगे, फौज में कौन जाएगा? घर का काम कर दो हमारे तो घर का काम करेंगे, वो तो फौज में भर्ती होंगे, फौज में भर्ती होंगे कौन? कि जैसे 60 लड़का लड़की होते हैं मुसलमानों के, 60 लड़का लड़की, तो वे ज्यादा हो वह जाए फौज में, कहीं दंगा हुआ तो वहां हाथ में ऋषि पिस्तौल और शस्त्र अस्त्र, फिर तुम्हारी क्या दशा होगी, समूल नष्ट कर देंगे, फौज में भी जाएंगे, क्यों आपके ज्यादा है ही नहीं, एक हमारे हो जाए अथवा दो हो जाए, बस क्यों एक संतान होना चाहिए, एक क्यों परिवार बढ़े नहीं, और छोरियों को मार देंगे, छोरे रहेंगे कुंवरे, उनके फिर संतान हो कैसे, ये दशा हुई है। मैंने ऐसी बात सुनी जयपुर में, ऐसे विचार किया, आज मैंने गिनता करी कि छोरियां कितनी है, विवाह लायक छोरे कितने हैं, छोरा छोरी गिनना करी तो उसमें तीन छोरों के पीछे दो छोरी है, अब एक तो कुमार रहेगा कि नहीं, तो मैंने अगर संतान होगी नहीं तो क्या दशा होगी, कृपात करते हुए छोरियों की कमी आ गई है, और कहा इस तरह से चला तो कुछ वर्षों के बाद में चार छोरा दो छोरी होंगी, उसे सब किया इस तरह से थोड़े वर्षों के बाद में छोरा होगा दो छोरी होगी, चार छोरा होगा, तो दो छोरों का ब्याह होगा, तो ये भी मर जाएंगे तो वो संपत्ति नष्ट हो जाएगी, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। महाभारत में और भागवत में आपने सुना होगा गृहस्थों के बीच में क्षत्रियों का बहुत वर्णन आता है, क्षत्रिय जाति बहुत विस्तृत थी, उसमें टीके की प्रचार प्रसार चला टीका लेने के लिए, तो महाराज छोरी ने जनता ही मार दिया, कन्याओं की हत्या कर दी, इधर कुमारे रह गए राजपूत, क्षत्रिय जाति नष्ट हो गई, ब्रिटिश जाति तो है, अब ये करोगे तो अब जाति नष्ट हो जाएगी, साफ ही वो पापिष्ठ यकृत कुल नाश, कुल का नाश करना है, महान घोर पापी है वो, तो ये काम कभी मत करो, भगवान की प्राप्ति करो, भजन करो, ऊंधा ऊंधा काम करके नरकों की तैयारी क्यों करो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, उसको नरकों की प्राप्ति का साधन बनाया है, घोर पतन है। नारायण नारायण नारायण।